ओम शांति। सोफे पे बैठते ही चखते हैं ना कि वीआईपी सोफा है आगे का। बैठ जाओ, जो अपने को वीआईपी समझे बैठो। बाबा के बच्चे वीआईपी नहीं है, सबसे बड़े। बाबा ने 3 वी जोड़े थे, वीआईपी। आज की मुरली पहुंचो सवेरे। समर्पण वालों के लिए अलग बातें कही और गृहस्थ वालों के लिए अलग। समर्पण वालों के लिए कर्मों की गति बहुत गहन है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में रहने वालों के लिए गहन नहीं है, पर उन्हें ट्रस्टी बनना है। आज इन दो चीजों पे ही क्लास करेंगे, ट्रस्टी बनना, समर्पित होना। क्या गृहस्थ में रहते हुए भी समर्पित हो सकते हैं? रहते हुए, छोड़ के भागने की जरूरत नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी समर्पित हो सकते हैं? बोलो, हो सकते हैं। एक ही शब्द है उसका, सब कुछ तेरा। और इसी से जुड़ जाता है ट्रस्टीशिप। सब कुछ तेरा हो गया तो हम तेरे को मेरी इच्छा से यूज नहीं कर सकते। ये दोनों ही चीजें बहुत ही गहन हैं और दोनों के बिना कोई भी आत्मा संपूर्ण नहीं बन सकती। बाबा ने उदाहरण दिया, ब्रह्मा बाबा ने शुरू में ट्रस्ट बनाकर अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। बाबा ने तो कहा माताओं की सेवा में पर यज्ञ रच दिया, विश्व सेवा में अपना धन अर्पित कर दिया। तो बाबा एक उदाहरण भी थे और हम सभी बहुत भाई बहने समर्पित भी हैं और गृहस्थ में रहने वाले भी हैं। एक समर्पणता है सब कुछ छोड़ के सेवाओं में लग जाना। कोई सेंटरों में सेवा करते हैं, कोई यज्ञ में यहां करते हैं। उनकी गति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। जो समर्पित हो गए उन्हें सारा संसार देखता है, ऊंची नजरों से, छोटी नजरों से, ऊंची नजरों से। और अगर वो ऊंची नजरों में खड़े नहीं उतरते तो उनके बारे में बहुत बुरा इम्प्रेशन लेकर लोग बाबा को भी छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत हो रहे हैं केस कि अरे ये समर्पित लोग भी ऐसे ही हैं, यहाँ कुछ नहीं है, चलो। बाबा को नहीं, बाबा को जानते नहीं, मनुष्यों को देखकर बाबा को छोड़ देते हैं। ये उनकी अपनी बहुत बड़ी गलती है। गलती कोई करे और भाग्य अपना खराब करें, ये बुद्धिमानी है या नहीं? बोलो, नहीं है। आज किसी ने कहा, ग्रुप आया है हमारे यहाँ भी ज्ञान सरोवर में, तो एक माताओं का ग्रुप मेरे पास आ गया। मैं चाय पी रहा था तो कहा यज्ञ धन से यज्ञ सेवा की बात वो करने लगे कि हमें तो बाबा ने जैसे मुरली में कहा ना, हॉस्पिटल बनाएंगे तो हेल्थ अच्छी मिलेगी, स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो एजुकेशन अच्छी मिलेगी। तो उस माता का प्रश्न था कि क्या यज्ञ में धन की सेवा अलग अलग जगह करने से अलग अलग प्राप्ति है? मैंने उसे कहा तुम ये सब क्यों सोचती हो? देना, चाहे धन दिया जाए या और कुछ चीज, देने का अर्थ है दिया और भूल गए। कहावत तो ये है, दाया हाथ दे तो बाएं को भी पता न चले। लेकिन बहुत देने वाले क्या सोचते हैं? मैंने दिया था इतना पैसा इस कुर्सी मंगाने के लिए, बहन जी ने मंगाई या नहीं? रोज देखते हैं ध्यान से कुर्सी आई, तो मैंने उसको यही उदाहरण दिया। और जितनी बार वो ध्यान से देखेंगे और बहन जी से पूछेंगे भी कुर्सी आई, उतनी बार उनका पुण्य कटता जाएगा। फिर कहने लगी कि क्या करें, विवेक है तो चलता है ना, सोचेंगे आप इस बात पर। विवेक है तो बुद्धि इस तरह चलती है, परंतु अगर ईश्वरीय विवेक है, बोलो आगे, बुद्धि शांत रहेगी। विवेक तो दुनिया में बहुत है लोगों के पास, इसलिए सोच सोच कर परेशान है, लेकिन ईश्वरीय विवेक, दिव्य विवेक अब बाबा को दे दिया, अपने 1000 रुपए बाबा के यज्ञ में लगा दिए, ये सोचने की जरूरत नहीं उसका भोजन लाया जा रहा है, सब्जी लाई जा रही है, तेल लाया जा रहा है, चीनी लाई जा रही है। अगर ये सोचते रह गए, शायद ये सोचे चीनी लाएंगे तो हमें चीनी बहुत मिलेगी, इसका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं। हमने ऐसे लोग भी देखे, उन्होंने कॉलेज खोले और खुद बुद्धू, हॉस्पिटल खोले और खुद रात दिन बीमार। वो तो बाबा एक उदाहरण देता है सिंपल, इसका अर्थ नहीं बोला ही नहीं कि तुमने हॉस्पिटल खोला तो ही हेल्दी रहेंगे। गांव में कई लोग हमारे यहाँ भील हैं, बड़े हेल्दी, खाते पीते मौज करते, कोई बीमारी नहीं। उनको पता भी नहीं होगा कभी हॉस्पिटल भी खोला जाता है क्या। तो ये जो गति है कर्म की, जो आज बाबा ने कहा जो समर्पित हैं, उनके लिए कर्म की गति गुह्य है। सब कुछ समर्पित कर दिया। पीछे बाबा ने एक बात कही थी जिसको हमने यहाँ रिवाइज किया था, आपको याद आ जाएगी। बच्चे कहते हैं बाबा तन तेरा परंतु आंखें मेरी। तो देखो समर्पणता का सूक्ष्म अर्थ, समर्पित कर दिया ना, अब मेरा कुछ नहीं रहा। बाबा ने राजयोग की परिभाषा दी है मुरलियों में ही, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। अब ये बात मोटी नहीं है, सब कुछ स्थूल रूप में छोड़ देने की नहीं कि परिवार को छोड़ के, धन छोड़ के कहे मेरा कुछ नहीं, उसके बाद भी मेरा रह जाता है बहुत कुछ। बहुत सूक्ष्म बात है कि हमारी बुद्धि का लगाव, हमारी आसक्तियां हटती चलें। इस बात पे विशेष ध्यान देना है, लगाव आसक्तियां हटती चलें। अगर सब कुछ छोड़ के भी लगाव रहता है तो त्याग का बल नहीं मिलता है। लक्ष्य आसक्ति से मुक्त हो जाएं तब योगी बनेंगे। अगर आसक्ति कहीं भी रह जाती है तो बुद्धि वहां जाती ही रहेगी। एक का अनुभव और सुना देना चाहता हूं। मैं मॉरिशस गया था 1 हफ्ते के लिए, हमारे साथ एक परिवार भी चला था दिल्ली साइड का। बात हंसने की भी है और बहुत कुछ सीखने की भी है। बहन जी जो चली थी, माता जी, उसको डर बहुत लगता, डर लगता है पानी से, इतना डर लगता है कि जैसे आज बरसात हुई ना तो वो इस पानी को भी नहीं देख सकती है, इतना भयभीत है पानी से। अब प्लेन तो सागर के ऊपर से ही उड़ेगा 5 घंटे, उसको पहले ही डर लग रहा कहीं गिर गया तो नीचे पानी ही पानी है, को हम तो बच ही नहीं पाएंगे। प्लेन का दरवाजा ही ना खुला तो, डर की बात बता रहा हूं। फिर उसके पति ने उसको कह दिया कि मैं हूं ना, मेरा नाम लिया, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, चलो तुम। वो आ गई मेरे भरोसे। अब देखो शिव बाबा का भरोसा नहीं उसे, वो बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा योग लगाती है और उसकी प्योरिटी की धारणा बहुत जबरदस्त है। उसके पति ने कुछ सुनाया, कहा देखो ऐसी पवित्र आत्मा है ये, सुना देता हूं और इसका सभी तुलना करेंगे, स्थिति, पवित्रता, निर्भयता, इन सबको हमें एक साथ कैसे लेकर चलना है। बहुत ही अच्छी बात है, कहा हम लोगों की इसकी आयु केवल 32 साल थी, इसने कबीर का कोई पढ़ा कुछ उसमें था, कोई 6 माह ब्रह्मचर्य में रहे तो उसे ये चीज मिल जाती है, भक्ति की कुछ थी। उसने अपने पति को कहा मुझे 6 माह पवित्र रहना है। हाँ रहो, उसकी भी अच्छी स्थिति, 6 माह वो पवित्र रही। 6 माह बीत ही रहे थे, कुछ और पढ़ लिया कि कोई 1 साल पवित्र रह जाए तो उसे ये मिल जाता है। उन्हें फिर कहा मुझे 1 साल रहना है। पति ने भी कहा ठीक है। 1 साल पूरा ही हो रहा था तो दूसरा पढ़ लिया कि अगर कोई 2 साल पवित्र रह जाए तो भगवान चलकर उसके पास आ जाता है। तो कितनी सुंदर बात, हमें तो पता ही नहीं। उसने पति को कहा मुझे 1 साल और पवित्र रहना है। कह रहा हो, और जैसे 2 साल पूरे हो ही रहे थे ये लोग ज्ञान में आ गए, भगवान चल के पास आ गया ना, तो उसकी तो प्रैक्टिकल हो गई। अब देखो, ऐसी पवित्र आत्मा और पानी से भयभीत और मोह बहुत ज्यादा। मैं ये बात खास मोह के लिए सुना रहा हूं। भयभीत तो क्यों है कि पूर्व जन्म में पानी से उसकी मृत्यु हुई है। कई बहनें सांप से बहुत डरती हैं, टीवी पर भी अगर सांप आ जाए तो उन्हें लगता है मेरे ऊपर ही गिरेगा ये। तो एक बहन तो पूरा जीवन ट्रेन में ही नहीं चढ़ी थी, डर था उसे बहुत ज्यादा ट्रेन से, कहीं मैं गिर गई, बहुत तेज चलती है, देखते भी डरती थी। क्यों होता है ये भय? हाँ, उसी से उसकी मृत्यु हुई, थोड़ी दर्दनाक हुई है, तो वो अंतर मन में भय छप गया है। अब जब वो ट्रेन देखेगी तो दूर भागेगी, भले ही पटरी दूर है और वो उससे दूर भागेगी कि कहीं मेरे ऊपर न चढ़ जाए। पानी में डूबने से मृत्यु हुई, थोड़ी खतरनाक ढंग से हुई है, कष्टदायी हुई है, तो पानी से भयभीत हैं। सांप के काटने से हुई है तो सांप से भयभीत हैं। अब इन सब से बचने के लिए तो अभी उसके पति ने उसे कह दिया था मैं हूं ना, चिंता की बात नहीं, अब मुझे उसका भय निकालना था। हमारे साथ एक बहन और थी, उसने उसको सिखाया कि अब सागर ही है वो, मॉरीशस माना, चारों ओर सागर से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू, जिधर जाओ सागर ही मिलेगा। अब उसने सागर देखा, जब हम उतरे प्लेन से तो दूर सागर दिख रहा था, कहती हाय सागर है यहाँ तो, डर गई। तो उसको वहीं से सिखाया उस बहन ने कि संकल्प करो अब से ये सागर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ये मुझे कष्ट नहीं देगा, मैं इसकी मालिक हूं। फिर मैंने उसको अभ्यास कराया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, प्रकृति की मालिक हूं, जल की मालिक हूं, जल मुझे सुख देगा। फिर हम उसे सागर के किनारे ले गए, घूमने जाना था हमें रोज थोड़ा थोड़ा सागर के किनारे। वो डरे, दूर बैठे, किनारे नहीं जाऊंगी, उसे आखिर ले गए हम और बैठा दिया कि पानी को सकाश दो। हर सकाश देने से उसका भय थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। फिर एक जगह बहुत ऊंची ऊंची लहरें थी, वहां फिर वो डरी। लेकिन तीसरी जगह क्या हुआ, एक जगह हम गए, स्पीड बोट कहते हैं उसे, बहुत तेज चलती है वो। अब उसमें हमें उसको बैठाना था, अब वो देख रही थी कितनी तेज चल रही, कम से कम 80 किलोमीटर की स्पीड से पानी में, मैं नहीं चढ़ूंगी, पति को भी चढ़ने न दे, तुम्हें कुछ हो गया तो हम अकेले रह जाएंगे। उसकी लड़की भी थी, उसका मोह, खुद कह रही मुझे मोह बहुत है भाई जी, क्या करूं मैं, बहुत मोह है मुझे। हमने कहा हम चारों ओर तुम्हारे बैठते हैं, तुम बीच में बैठ जाओ, आखिर उसे बैठा दिया। अब वो स्पीड से चली बोट, थोड़ी डरे वो लेकिन निर्भय हो गई। अब सागर के बीच में एक जगह वो बोट रुकी जहां प्लेटफॉर्म बनाया था लकड़ी का, वो ऊपर ले जाते हैं रस्सी से बांध के, पैरासेलिंग कहते हैं उसे, मन उसको बांध देते हैं कुर्सी जैसी में, बोट चलती है तेज, बड़ा अच्छा लगता है। अब उसको हम हंस रहे, अब वो प्लेटफॉर्म पे उसे बैठा दिया, वो लकड़ी का था समझो 20x20 फुट का, सागर के बीच में चारों तरफ सागर, बीच में बैठे हैं, अकेली नहीं थी वो, अंग्रेज थे, कम से कम 20 लोग थे उस पे बैठे हुए थे और नंबरवार उस पे जा रहे थे। तीन तीन मिनट का वो था। अभी उस पे बैठे बैठे वो चारों ओर जो सागर देख रही, मैंने उसे कहा इसको सकाश देनी है आपको, यहाँ बाबा इसलिए आपको लाया है, तो ना उसका भय निकल गया। अब देखो जो पानी को देख नहीं सकती थी वो सागर के बीच में बैठी रही आधा घंटा, फिर हम उसको सागर में ले गए किनारे किनारे, थोड़ा थोड़ा पानी होता है 6 इंच का 8 इंच का, वो वहां खड़ी रही बहुत देर, तो भय निकला। तो कह रही थी मेरे जीवन में सबसे बड़ी गिफ्ट हो गई ये यात्रा मेरी। भय माना तो आप हैरान होंगे कितना भय उसे था, समझ भी नहीं सकते, पानी देखी और डेड हो गई, ऐसा हाल था। तो किसी को भी अगर इस तरह का भय हो, सांपों से भय हो, सांपों को वाइब्रेशंस दे दो रोज 5 मिनट इस संकल्प से तुम सभी मेरे गुड फ्रेंड हो। प्रकृति पानी से हो पानी को दो, अग्नि से हो अग्नि को दो, पहाड़ों से भी होता है, ऊंचाई देखेंगे एकदम डर जाते हैं क्योंकि गिरने से मृत्यु हुई है। तो ये सब मेरे गुड फ्रेंड हैं और मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरी मृत्यु होती ही नहीं। तो बहुत जरूरी है मोहों का त्याग करना, क्योंकि मोह की परीक्षा ही सबसे भयानक होगी। सबको मरना ही है ना, सामने सामने मरेंगे, अपने भी मरेंगे दूसरे भी मरेंगे। बाबा भी सुनाया करते थे राम गयो रावण गयो, ये कबीर ने लिखा है, दोहा है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, बहुत बड़ा परिवार जिनको था सब चले गए। तो सबको जाना है ना, और जो परिवार आज हमारे पास है वो पिछले जन्म में था, अगले में होगा नहीं, बदलते चलेंगे परिवार। इस चिंतन के द्वारा और अशरीरीपन के अभ्यास के द्वारा अपने मोहों की जंजीरों को ढीला करते चलना ही है, नहीं तो बड़ा कष्टकारी होगा, लोग पागल होंगे इसी में। सदमा, सदमा कहते हैं हिंदी में, शौक इतना ज्यादा लगेगा कि वह देख रहे तो देखते ही रहेंगे, डेड हो जाएगा ब्रेन। तो सभी पसंद है माताओं को, माताएं इसमें कमजोर हैं थोड़ी, मोह तो भाइयों को भी होता है पर वो निकल जाते हैं बाहर। मजबूत बनना है, कौन है हम सभी आत्माएं और बहुत पावरफुल आत्माएं, और जो आपके बच्चे हैं पति है उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखो। माताओं को डिप्रेशन हो जाता है, पति से बहुत मोह, एक माता 75 साल की, पति 80 साल का, यानी 25 साल से पति ने शरीर छोड़ दिया, माता जी डिप्रेशन में आ गई, अकेली हो गई मैं संसार में, का 25 साल में बाबा को अपना ही नहीं बनाया, मेरे को बात की, मैंने उसे बहुत प्यार, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ उसको नहीं कहा, पर मैं सोचने लगा देखो 25 साल से ज्ञान में है, बाबा बाबा बहुत किया, यज्ञ सेवा बहुत की, लेकिन मोह से मुक्त नहीं हुए, तो डिप्रेशन में आ गई। इतनी आयु में 75 साल की आयु में डिप्रेशन होना बहुत खतरनाक हो जाता है, कौन संभाले उसे। तो ये अपने को अच्छी तरह तैयार करें, सभी जो कुछ होगा उसे हमें स्वीकार करके हल्का रहना ही होगा, अभी से प्रैक्टिस चालू हो, जो होगा जो हो रहा है उसे स्वीकार करने की प्रैक्टिस पड़ जाए अभी से। जरूरी है या नहीं, आज ही अचानक बारिश हुई सवेरे, नीचे तो ज्यादा ही खराब हाल हो गया, क्योंकि मुझे लगता है जो स्वरूपगंज का डैम है ना वो थोड़ा सा टूट गया है, बता रहे थे बहुत पानी आ गया है, जो अपनी ज्ञानामृत प्रेस है उसमें भर गया है, और डायमंड होल में भी जाने लगा था, मतलब बरसात तो बहुत हो रही थी पर ऊपर से नदी जो है ना नीचे फुल चल रही 10 फुट उसको पुल को टच करते हुए, तो इतनी तो बरसात से होती नहीं कभी, तो वो पीछे से आ गया है। एक बार 73 में ये डैम टूटा था, 9 फुट पानी था, अब रोड के आगे तक, गांव के गांव बह गए थे तब भी अचानक टूटा। रात को टूट जाए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। तो इन चीजों को भी स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं, या हमारे रोने से या हमारे परेशान होने से विनाश रुक जाएगा? नहीं। इसलिए हमें अपने को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, समर्पण भी और ट्रस्टी भी। बाबा मुरलियों में कुछ गुह्य बातें कहता है, लेकिन न तो मुरली सुनाने वाले उसको विस्तार करते हैं, न सुनने वालों को ज्यादा कुछ समझ में आता है। इंश्योर कर दो अपना सब कुछ, अभी बस पढ़ने वाले फटाफट पढ़ जाते हैं, इंश्योर कर दो। शायद उन्हें भी नहीं पता होता कि इंश्योर करने का मतलब क्या होता है। बाबा को दे दो सब कुछ तो तुम्हारा विनाश होगा ही नहीं ना। तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी संपत्ति है, तुमने सच्चे मन से कर दिया बाबा ये सब तुम्हारा है, बात स्थूल में देने की नहीं, मन से कर दिया ये सब कुछ तुम्हारा है, तो विनाश तो होगा ही नहीं ना हमारा। इंश्योर हो गया बाबा के पास, बहुत गुना होकर हमें मिल जाएगा। इंश्योरेंस कराते हैं ना, या कारों को भी कराते हैं, अपने लाइफ को भी कराते हैं, आजकल तो हेल्थ के लिए भी करते हैं, और बहुत सारे इंश्योरेंस निकले हुए हैं आजकल, एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए भी है। तो ऐसे ही हम भी अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दें, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे हवाले, हम भी तुम्हारे, हमारा सब कुछ भी तुम्हारा। ठीक बात है या ये केवल कहने के लिए है? बोलो माताएं कोच पे बैठी हुई, ठीक बात है, हिंदी समझते हैं ना? हम भी तुम्हारे और हमारा सब कुछ भी तुम्हारा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ट्रस्टी होना पड़ेगा। देखो ट्रस्टी में एक सुंदर प्रैक्टिस तो यही है, अपने घर को देखो, संकल्प करो ये किसका है, बाबा का। नहीं तो विनाश काल में लोग छोटी बातों के कारण बहुत संशय में आते हैं। भुज में भूकंप हुआ था, भुज है गुजरात में, भूकंप हुआ था बहुत बड़ा। एक भाई कहानी सुनो, बहुत अच्छे ज्ञान में, कितने अच्छे थे कि हर मीटिंग में बाबा से मिलने आते थे। उन दिनों बाबा ज्यादा बार आते थे, 12, 14, 15, 16 बार, इतनी बार वो बाबा से मिलने आते थे। भूकंप हुआ, दोनों क्लास करके आए थे, घर के पास आए, भूकंप होने लगा, उनकी टंकी उनके सामने ही फट गई, परेशान हो गए, मकान में क्रैक आ गए, दुखी हो गए, बाबा को छोड़ दिया। कितना अच्छा काम किया, जैसे बाबा ने उनका घर, ये नहीं सोचा कि बाबा ने बचाया हमारा, लोगों के तो तहस नहस हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया, बच्चे पति पत्नी सभी खत्म हो गए, 3 लाख मरे थे, 30,000 दिखाए थे केवल समाचारों में। उसको ये नहीं हुआ कि चलो टंकी फटी बस इतने से ही काम हो गया पूरा, बाकी सब कुछ सेफ है, क्रैक हुआ है वो भर जाएगा, सीमेंट हो जाता है, क्या हुआ उसमें, लेकिन संशय आ गया बाबा में, बाबा ने हमारे घर को क्यों नहीं बचाया। बाबा घर बचाने आए और कुछ करने, सोच लो, ये भूल गए कि बाबा ने हमें बचा लिया, हम घर में बैठे होते और सब कुछ गिर जाता तब। तो मनुष्य को अपने निश्चय को भी थोड़ा सा ध्यान देकर पक्का करना है। अविनाश होगा, बाबा के बच्चे कहेंगे हमारे बच्चों का विनाश क्यों कर दिया बाबा ने, दूसरों के बच्चों का करता चलेगा काम? वो तो आया ही है युग बदलने के लिए, ये धरती खाली होनी ही है, कोई रोए संचय करे भगवान को गाली दे परेशान हो, इससे ये काम रुकेगा नहीं। युग बदलना है, रात पूरी हो रही है तो दिन तो आएगा ही, उस बीच में ये थोड़ा सा होगा। मकान तोड़ के नया बनाना है तो तोड़ने की प्रक्रिया में धूल उड़ती है, कैसा लगता है जब पुराना मकान तोड़ा जाता है, लेकिन तोड़ना तो पड़ेगा नया बनाने के लिए। इसलिए अपने निश्चय को सभी बहुत स्ट्रांग करेंगे और मोह को नष्ट करने का अभी से अभ्यास होना चाहिए। बच्चों को देखो कि संकल्प से देखो, इसका उत्तर भाई देंगे। और ये सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये संकल्प करके तो देखो आपके घरों में कितने अच्छे वाइब्रेशंस बनते हैं। आपके घर में 5 लोग हैं, ये सभी आत्माएं हैं अपने अपने शरीरों में अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। वाइब्रेशंस अलौकिक हो जाएंगे। एक और बहुत सुंदर बात जो बाबा बहुत सिखाते आए शुरू से ही, किसी ने सीखी है किसी ने नहीं सीखी, आप सभी सीख लें उसे। मेरा घर बाबा का यज्ञ है, अपने घर को बाबा का यज्ञ मान लो, बना दो उसे यज्ञ। और हम कौन है उस यज्ञ के? ट्रस्टी भी हैं, संभालने वाले भी हैं। अब वो हो गया बाबा का, हमें उसको संभालना है, हम उसके ट्रस्टी बन गए, हमें उसको संभालना है। इस दृष्टि को अपना ले जरा सभी। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। बहुत ही सुंदर और गुह्य बात है। मेरा घर है ये कहने से कठिनाइयां होंगी, बाबा का यज्ञ है तो जैसे हम लोग यज्ञ में रहते हैं बहुत निश्चिंत रहते हैं ना। घर में रहने वालों को कुछ ना कुछ चिंता होती अवश्य है। यज्ञ में रहने वालों को पहला भाग्य मिलता है निश्चिंत जीवन। सोच लो सभी यज्ञ निवासी, ऐसा भाग्य निश्चिंत रहना अति कठिन। अरबपति लोग भी निश्चिंत नहीं रहते और यहाँ जेब खाली वाले भी निश्चिंत रहते हैं। सब सेवा में जो आए हैं वो भी निश्चिंत है ना, कोई चिंता नहीं। टमाटर क्या भाव बिक रहा है, चीनी महंगी हो गई या सस्ती हुई, जीएसटी किन किन पे लागू हुआ, कुछ मतलब नहीं। खाओ पियो सेवा करो योग लगाओ और आनंद मनाओ। निश्चिंत जीवन समर्पित करने का पहला श्रेष्ठ भाग्य बाबा हम सबको ये देते हैं। जो समर्पित हैं वो इस पे ध्यान देंगे तो अपने निश्चिंत जीवन का फायदा उठाएं। क्या प्राप्त करके बोलो, अब इस पे चिंतन करेंगे सभी। निश्चिंत जीवन मिला है, इधर माताएं और गृहस्थ वाले भाई बैठे हैं, उनसे पूछो चिंताएं कितनी होती हैं, बच्चे ये वो, पहले शादी की, पहले पढ़ाने की चिंता, फिर शादी करो इनको सेट करो, फिर लड़के की शादी तो हो गई लेकिन दोनों की बन नहीं रही, अभी डिवोर्स हो रहा है, झंझट हो रहे हैं, गृहस्थी होगा तो बेचारों का सारा समय इस उथल पुथल में बीत जाता है। मैं जब सुनता हूँ ना लोगों कहानी तो बाबा को धन्यवाद देता हूँ, हमारा जीवन कैसा बनाया आपने, कोई चिंता नहीं रही पूरा जीवन। यज्ञ निवासियों का ऐसा ही जीवन है, कोई चिंता करे वो उसकी गलती, पर बाबा ने तो निश्चिंत जीवन दिया है। अब इस निश्चिंतता का फायदा उठाएंगे, कोई इससे नुकसान उठा लेते हैं, निश्चिंत होने पर अलबेलापन आ जाता है जीवन में। कमाने की चिंता नहीं है तो अलबेले हो जाते हैं, लेकिन निश्चिंत जीवन है तो लक्ष्य बनाना चाहिए, श्रेष्ठ योगी बनना है। पल पल बाबा की सेवाओं में सफल करके इस जीवन को सफल करना है, महान भाग्य बनाना है। मुझे आते आते किसी ने कहा था सेवा पे कुछ क्लास कराओ, लोगों की सेवा में रुचि कम होती जा रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा आपको, सबकी कम नहीं होती, मैं देखता हूँ भाई आए हैं अपना सिलाई करने के लिए, 12-12 घंटे काम करते हैं आप सभी, तो सबका ये नहीं है, किसी की होती होगी। जिम्मेदारी संभालने का गुण लाना ये राजाई संस्कार है, समझ रहे हैं ना, जिम्मेदारी, और वो भी यज्ञ के कार्यों की जिम्मेदारी, भगवान के कार्यों की जिम्मेदारी, जिसने हमें ये कहा तुम मेरे राइट हैंड हो, कितनी बड़ी चीज है। इसमें कोई अलबेला हो तो उसका भाग्य बहुत कटने लगता है। आज हमारे वहां जो एक बहन आई है, एक छोटा सा अनुभव सुना रही थी, एक नया सेंटर खुला तो दो माताएं भोग बनाती थी, तो वो क्या करती थी, बाबा का भोग डालने से पहले अपना भोग अलग रख देती थी, निकाल के पैक करके बच्चों के लिए ले जाएंगे। सोच लो आप, ये छोटी गलती या बड़ी, भगवान को तो भोग जाएगा ही नहीं, तो झूठा कर दिया, पहले ही झूठा हो गया। तो बस उतने इतना ही सुना इशारे में, जब वो आए थे बहुत साहूकार थे और अब बहुत गरीब हो गए हैं, क्योंकि भगवान का हिस्सा खाते गए ना, सुदामा की तरह, सुदामा की तरह भगवान का हिस्सा खाते गए, उसको तो भोग पहुंचा ही नहीं। तो ये गलती कोई नहीं करे, यज्ञ में हम समर्पित हैं, जी जान लगा दें इस यज्ञ को सफल करने के लिए, ठीक बात है या नहीं, तब तो भगवान भी जी जान लगा देगा ना हमारा श्रेष्ठ भाग्य देने के लिए। जो हम करेंगे उसके लिए उससे बहुत ज्यादा गुना वो कर देता है ना हमारे लिए, और यही बल दे देता है। मैं तो ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने सेवाएं बहुत अच्छी की यज्ञ में, भले ज्ञान योग ज्यादा नहीं किया, लेकिन अंत तक बाबा की मदद उनको मिलती रही, बीमारियों में मदद मिलती रही। और जिन्होंने सेवाएं अच्छी नहीं की, केवल खाया पिया मौज मनाई, उनको कष्ट हुआ, होता रहता है कष्ट। तो बाबा के बल से हम वंचित न हो जाएं, ये ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा स्लोगन आप सभी अपनी बुद्धि में समा लेना, इस समय भगवान हम पर राजी हुआ है। भाई अच्छा गीत तो वो बजता है 9:30 वाला, मैं भूल गया था, नहीं तो बहुत अच्छा गीत अभी बना है ना, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, सुना है ना, बहुत सुंदर गीत है, बजा लिया करें योग में, नहीं वो तो ट्रैफिक का बजता है ना, कोई बात नहीं, फिर बजा देना, फिर बजा लेना, बहुत अच्छा गीत है। मैं आज सवेरे उठते ही बजा दिया था, मेरी आंख कभी कभी जल्दी खुल जाती, आज 2:45 खुल गई। अब मैं सोचा, उसे पहले भी खुल गई थी, प्यास लगी थी बहुत, दो बार खुल गई 2:45 तक ही। अब मैं सोचा अभी योग ही कर लेता हूँ, फिर सो जाऊं तो पता नहीं देर न हो जाए, तो मैंने उठते ही ये गीत बजा दिया, कल ही भरवाए थे अपने व्हाट्सएप में, ईश्वर से हमने मुलाकात की। शब्द भी इतने सुंदर हैं, गजब के, जिसने भी लिखा बहुत सुंदर, और जिसने गाया है उसने भी उसमें वाइब्रेशंस भर दिए हैं। तो भगवान हम पर मेहरबान हुआ है, याद रहेगा, उसकी मेहरबानी का फायदा उठाना हमारे अपने हाथ में। सोच लो, सब चिंतन करेंगे, सब कुछ देने के लिए राजी हो गया है, सामने खड़ा होकर कहता है मेरे से जो चाहे ले लो, सभी चिंतन करेंगे। जो भट्टी में आए हैं, दूर से आए हैं ना, 300 से कौन कौन आए हैं, अच्छा इतने दूर से आप लोग आ गए, लंबी यात्रा तय करके थक गए होंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई यहाँ आने की, तो ऐसा बन के जाना कि अगले 4 जाने के आनंद से भरपूर, अब भी आनंद में आए होंगे आप, बाबा के पास जा रहे हैं उसकी खुशी भी तो बहुत बड़ी है ना, और जब जाएंगे तो इन खुशी को कई गुना करके वापिस जाएंगे ना। तो ये सोचना है सभी को, स्वचिंतन बहुत जरूरी है श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए, भगवान राजी हुआ है, हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सब भट्टी में सोचेंगे, बहुत अच्छा, और अपने पुरुषार्थ का एक प्लान बनाकर जाएंगे यहां से। अब कोई ये भी सोच सकता है कि चार दिन मेरे तो यात्रा में ही बीतेंगे, लेकिन चार दिन लाइट हाउस बन के जाएं तो संसार को सकास देने में भी तो बीत सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक लेक्चरर मेरे पास आया, कुमार, कहा बहुत बिजी रूटीन है मेरी, मुझे एक घंटा अपने गांव से पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है बाइक पर, एक घंटा आने में लगता है, मैं थक जाता हूं, फिर पढ़ाना, फिर घर में भोजन बनाना, कैसे मैं पुरुषार्थ करूं? देखो, उसको अब तक ये स्मृति थी, बहुत काम करना पड़ता है। मैंने उसको कहा इस स्मृति को चेंज करो, एक घंटा जाना और एक घंटा आना है ना, तुम फ्री हो दो घंटे, इसमें प्लान बनाओ कि मुझे क्या अभ्यास करना, आनंद लो गाड़ी चलाने का, अपनी बाइक चलाने का, और आनंद मनाते हुए कभी मैं फरिश्ता हूं, कभी बाबा मेरे साथ बैठा है, कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, अलग अलग अभ्यास करो, दो घंटे में आनंद आ जाएगा। आनंद आ गया उसको। फिर मैंने कहा दो घंटे तुम्हें भोजन बनाने में लगते, डेढ़ तो लगता ही है। कहा मैं सोचता हूं थक के आया, भोजन बनाना है, खिचड़ी बना के खा लेता हूं। कुमार तो कुकर ही रख देते ना बाबा के आगे, भोग स्वीकार कर लो, पूरा का पूरा कुकर सहित ही खा लेना। मैंने कहा नहीं, डेढ़ दो घंटा तुम्हारे लिए भोजन का है, इसको तपस्या बनाओ, अपनी आनंद लो, बिल्कुल मन को तैयार करो, मुझे भगवान के लिए, अपने प्रियतम के लिए भोग बनाना है, आनंद पूर्वक उसे बातें करते हुए अच्छे गीत बजा लो, बाबा से रू ध्यान करो। आप हैरान होंगे, उसका योग 5-6 घंटे हो गया, बहुत जल्दी। केवल विचारों को बदलना है। हर जगह योग अभ्यास किया जा सकता है। पढ़ाते हुए मैंने उसको बता दिया, बड़े बच्चों को पढ़ाता है, लेक्चरर है, क्या क्या अभ्यास करो तुम, 4 पीरियड उसको लेने हैं, 4 पीरियड में तुम क्या क्या अभ्यास करो। उसका कर्म योग इतना सुंदर हो गया कि बैठने की भी आवश्यकता नहीं रही। तो भगवान हम पे राजी हुआ है, हुआ है या नहीं? देख लो, इस गीत में है, वरदानों की बरसात की है, खुशियों का खजाना दिया है, ऊंचे ख्यालातों की सौगात दी है। बहुत ही अच्छे शब्द हैं, कम से कम 8 बातें ऐसी हैं जिन पे बहुत अच्छी अच्छी क्लास हो जाए, तो सभी इसका पूरा फायदा उठाएंगे और सोचेंगे बाबा का बनकर हम निश्चिंत हुए हैं। ये सद्विवेक है, ये ईश्वरीय विवेक है कि उसका बनकर, उसका हाथ पकड़कर, उसकी छत्र छाया में रहकर हम निश्चिंत हो जाएं। जिसको भगवान साथ दे रहा हो, जिसकी चिंता स्वयं भगवान करता हो, वो भी यदि चिंतित हो तो दुनिया वालों का क्या होगा? जिनके लिए वो स्वयं कह रहा हो मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं, वो भी अपने को अकेला समझते हो तो कैसा रहेगा? चिंतन करें। बाबा बहुत मदद कर रहा है, बाबा बहुत कुछ दे रहा है, हमारा मार्ग क्लियर कर रहा है, हम उससे लेना सीख लें। और लेने का एक ही तरीका है, उससे हमने नाता जोड़ लिया, हम तुम्हारे तुम हमारे, ये गीत अंदर बजता ही रहे। और जितना अच्छा योग का बंधन बांधेंगे अपने में, उतना सभी बंधनों से हम मुक्त होते ही जाएंगे। तो सभी, फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, पुरुषार्थ का प्लान बनाकर जाएंगे यहां से, और ये सोचेंगे जो पुरुषार्थ अब हम कर रहे हैं उससे डबल कर सकते हैं। कैसे? प्लान बनाएंगे उसका, उसे बहुत अच्छा किया जा सकता है। कैसे, कहां कहां करें दिनचर्या में पुरुषार्थ, किन किन चीजों का त्याग कर दें, अंतर्मुखी हो जाएं, स्वचिंतन करें तो ये जीवन सचमुच बहुत सुंदर है और आने वाले दिन भी हम सबके लिए बहुत सुंदर होंगे। आने वाले दिन माना सतयुग के नहीं, संगम के ही। हमारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन की बात बहुत चली थी ना इलेक्शन में, उनके लिए तो क्या आएंगे, हमारे लिए आ रहे हैं अच्छे दिन, जिनका साथी भगवान बन गया, जो कदम कदम पर श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनकी समस्याओं का निवारण स्वयं परम सद्गुरु करते हैं, जिनका गाइड, सोचो गाइड, राह दिखाने वाला स्वयं ज्ञान सागर हो, उसके पास हम आ गए हैं तो अपना प्लान बनाकर जाना बहुत अच्छा। बिना प्लानिंग के पुरुषार्थ श्रेष्ठ कभी नहीं होता। आप घर में भोजन बनाती हैं, उसका भी तो प्लानिंग करते हैं या नहीं, या ऐसे ही बन जाएगा? प्लानिंग होती है। अब वहां से यहाँ आए उसकी भी तो प्लानिंग की ना, 4 मास से 6 मास पहले से ही प्लानिंग कर ली होगी, पैसा भी इकट्ठा रखें, रिजर्वेशन भी कराएं, छुट्टी भी लें, कैसे चलना, काम भी पूरा कर लें जरूरी, प्लानिंग करता है ना मनुष्य। तो हम अपने पुरुषार्थ की भी सुंदर प्लानिंग करेंगे। ओम शांति।
भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।